धवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम स्तुतात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सर्वसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मनुव मम पर्थसौखमणवच्चम् केवल पहोहनिज्य दुन्नयति मिरंजिनम् नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का जो प्रथम खंड है जीवस्थान, उसमें सत्प्ररूपणा चल रही है, और दूसरी पुस्तक के 628 पृष्ठ पर हम आ गए, 628। यहाँ हम काय मार्गणा की बात देख रहे थे। कल परसों आप नहीं आए थे, हमारा हुआ था, एक ही दिन नहीं हुआ था। देखो, काय मार्गणा में जैसे पृथ्वी काय, कप काय, जल काय, यानी अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और फिर उसके भेद प्रभेद, इसकी बात चली, उस पर सारे हमने आलाप लगाए। 628 पेज पर आना अभी। हाँ, अभी अकायिक जीव। अकायिक का अर्थ क्या है? जिनके शरीर नहीं है, ऐसे कौन जीव है? सिद्ध भगवान। हाँ, तो उनकी बात अभी बताएंगे। अकायिक जीवों के आलाप कहने पर उनका कौन सा गुणस्थान है? कोई नहीं, तो अतीत, यानी पार हुए उससे। हाँ, अतीत गुणस्थान, अतीत जीव समास, यानी उनमें जीव समास में हम वो 14 भाई करते, उसमें कुछ नहीं लेंगे। उसमें अतीत पर्याप्ति, अतीत प्राण, ये द्रव्य प्राण नहीं, उनके भाव प्राण से तो युक्त है। क्षीण संज्ञा, अतीत चतुर्गति, कहीं कहीं उनको सिद्धि गति भी कहते हैं, परंतु वो अतीत गतियों से अतीत हो गए। अतीन्द्रिय, अकाय, अयोग, अपगत वेद, अकषाय, अब केवल ज्ञान, नहीं तो कषाय नहीं तो ज्ञान भी नहीं, ऐसा होगा कि नहीं? संयम असंयम और संयमासंयम, इन तीनों विकल्पों से विमुक्त, केवल दर्शन, द्रव्य और भाव से अलेश, शरीर ही नहीं तो द्रव्य की लेशा होने का सवाल नहीं, और भाव से तो 14 वाले भी अलेश हो गए, तो सिद्ध भगवान भी अलोश, यानी ना योग है ना कषाय है। भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि, किन दोनों विकल्पों से रहित। आप कहेंगे भव्य कहो ना उनको, नहीं भव्य किसको कहेंगे? होने योग्य को, अभी हो चुके ना, अभी उनको होने योग्य नहीं कहेंगे, हो चुके, तो उससे रहित कहेंगे भव्य अभव्य से। क्षायिक सम्यक्त्व, संगिक और असंगिक, इन दोनों विकल्पों से अतीत, वो 13वें 14वें वाले को भी संगी असंगी से अतीत कहते, ये तो सिद्ध है। अनाहारक, साकार और अनाकार उपयोगों से युगपत उपयुक्त होते हैं। तो ये तो हमने त्रसकायिकों में हम ले रहे थे, इसी प्रकार त्रसकायिक निवृत्ति पर्याप्त जीवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक के आलाप मूल ओघालापों के समान जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? पहले हमने त्रसकायिकों में लगाए, सामान्य त्रसकायिक, पर्याप्त अपर्याप्त वगैरह भेद देखे, अब उसमें 14 गुणस्थान है और गुणस्थान से अतीत वो भी है, उसकी बात हो गई। तो कहते हैं अभी हम त्रसकायिकों के जो भेद करेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, उसकी बात बता रहे हैं। अब कहते हैं त्रसकायिक लब्धि अपर्याप्त जीवों के आलाप कहने पर, त्रसकायिक लब्धि अपर्याप्त कहने पर जीव समास कौन कौन से हो गए अश्विन भाई? सब यानी कौन से? कितने होते? हाँ किसकी बात चल रही है? त्रस्काई की आप बताएंगे? विंद्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, संगी अपर्याप्त, सभी के अपर्याप्त लेना है। हाँ देखो देखो, ये तो जीव समाज कौन से हो गए? इंद्रिय, इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंच संगी, सब में लब्धि अपर्याप्त होते हैं। जो हम कहते हैं श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु वाले कौन से जीव होते हैं? सारे ये हाँ अकेले निगोदने सभी सभी हाँ। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, 628 पेज है, नीचे का पैराग्राफ। त्रस्काई कहने से द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव हो गए और उनमें लब्धि अपर्याप्त जीव कहना है, तो सारे सभी के अपर्याप्त अपर्याप्त ले लेना जीव समास में। देखो एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, द्विंद्रिय, तिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संज्ञ, असंगी, पंचेंद्रिय संबंधी 5 अपर्याप्त जीव समास। अभी सबके पर्याप्तियां बताने अपर्याप्तियां बतानी, अभी तो अपर्याप्त है तो अपर्याप्तियां कहेंगे हम, तो संगी पंचेंद्रियों के 6 अपर्याप्तियां और असंगी के, चतुरिंद्रिय के, तिंद्रिय के, द्विंद्रिय के 5 अपर्याप्तियां। संगी पंचेंद्रिय से लेकर द्विंद्रिय तक के क्रम से 7 प्राण, सभी अपर्याप्तों के प्राण गिनने हैं, तो 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण और 4 प्राण, द्विंद्रिय के 4 हो गए अपर्याप्तों के। याद है कि भूल गए? द्विंद्रिय अपर्याप्त के प्राण बताओ, 4 बताए उन्होंने, कितने बता चुके, अभी आपको कौन से वो बताना है? क्या है वो बताओ। देखो देखो, इंद्रिय प्राण कितने हैं द्विंद्रिय के? दो इंद्रिय प्राण हाँ, फिर बल प्राण,
बल
काय बल प्राण हाँ हाँ, और चौथा आयु हाँ, श्वासोश्वास नहीं है, वचन बल नहीं है, चारों संज्ञाएं। तिर्यंच और मनुष्य ये दो गतियां, क्योंकि त्रस्काय लब्धि अपर्याप्त कह रहे, देव और नारकी में लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, निवृत्ति अपर्याप्त होते, यानी वहां अपर्याप्त काल वहां होता है, परंतु लब्धि अपर्याप्त जो है इतनी आयु वाले वो उसमें नहीं होते, इसलिए दो ही गतियां लिए। द्विंद्रिय जाति को आदि लेकर 4 जाति, यानी द्विंद्रिय जाति, तिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति। त्रस्काय, काय तो उन्होंने बता ही दिया है, त्रस्काय हो गया। अभी योग कौन कौन से हो गए? और कर्मा हाँ बहुत अच्छा, नपुंसक वेदी होते हैं उनमें, चारों कषाय, भले संगी पंचेंद्रिय भी क्यों ना हो पर लब्धि अपर्याप्त है तो नपुंसक वेद वाले, उनमें कोई स्त्री पुरुष नहीं होते, चारों कषाय। आदि के 2 अज्ञान, असंयम, क्योंकि पहला ही गुणस्थान होता है ना सबका, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं अपर्याप्त होने से, भाव से कृष्ण, नील और कापोत लेशाएं, जैसे एक इंद्रियों में हम देखे असंगी, असंगी तक अशुभ लेशाएं, वैसे इनमें भी लब्धि अपर्याप्त को में भी संगी पंचेंद्रिय भी क्यों न हो तो उनके अशुभ 3 लेशाएं। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक और असंगिक, आहारक भी और अनाहारक भी, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस प्रकार काय मार्गणा समाप्त हुई। अभी तक कौन कौन सी मार्गणा देखी? मार्गणा के नाम गिना हो ना, पहली मार्गणा कौन सी है? गति मार्गणा, फिर इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा, 3 हो गए, गति, इंद्रिय, काय। अब कौन सी होगी? योग। अब कैसे बताएंगे हम? एक एक योग का नाम लेंगे, फिर उस योग में कौन कौन से गुणस्थान हो गए, कौन कौन से जीव समास हो गए, कौन कौन से, ये सब लेशा विशा प्राण सब बताना है ना? अच्छा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग? हाँ देखो, अभी हम कहेंगे योग मार्गणा के अनुवाद से। तो हम ऐसा पहले पूछेंगे आपको, योग वाले जीव है, गुणस्थान कितने हो गए, कौन सा योग है उसकी चिंता मत करो, कोई ना, चौदह, चौदहवें में कौन सा योग है, तेरह तेरह हो जाएगा, क्या नहीं ना बस काय मार्गणा में 114 दिए, इंद्रिय मार्गणा में 114 लिए, यहाँ तो योग तो 13वें तक ही है, तो 13 ही गुणस्थान कहने पड़ेंगे। तो देखो, योग मार्गणा के अनुवाद से आलापों का कथन, आलापन यानी जो वेदों का कथन कर रहे हैं, मूल ओघ आलापों के समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि यहाँ पर 13 ही गुणस्थान होते हैं ना, बात अयोगी गुणस्थान और अतीत गुणस्थान नहीं होता। सो आगम अविरोध से जानकर, आगम अविरोध है ना, आगम में जो ऐसा है वैसा जानना, उसके विरोध से नहीं जानना, उसमें जो अविरोध है यानी आगम के अनुसार जानकर मूल ओघालाप कहना चाहिए। यानी योग वाली जीव है बस इतना ही लेना है, तो 13 गुणस्थान है, जीव समास कौन से हो गए, सबको योग है ना, तो 14 की 14 जीव समास हो गए। हम यहाँ कौन सा योग है उसकी बात नहीं कर रहे, औदारिक है कि वैकरिक है उसकी नहीं चर्चा कर रहे, योग वाले है। तो 13वें गुणस्थान तक जो हमने सामान्य से कहा वैसा यहाँ पर कहेंगे, है ना, योग है बस इतनी ही बात है। तो उसमें 13 गुणस्थानों का जो सामान्य से देखा हमने, कौन से गुणस्थान में कौन से योग हो सकते हैं वगैरह, वो सभी 20 के 20 प्ररूपणा लगानी है हमको। तो मूल ओघालाप कहना चाहिए, मूल ओघालाप ने जो हमने गुणस्थानों का देखा था मूल में 13 गुणस्थानों पर लगाया था, वैसे यहाँ पर भी लगा लेना। अब एक एक भेद करके यहाँ देखेंगे। अब मनोयोग कौन से जीवों के होगा, संगी पंचेंद्रिय, तो मनोयोगी जीवों के आलाप पूछेंगे, तो गुणस्थान कौन से हो गए, 1 से 13, बहुत अच्छा क्या समझ आती है ना, तो 1 से 13 कहेंगे। और अभी आपको जीव समाज बताना है, आप बताएंगे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि मनोयोग अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, इस तरह सोचना। अभी हमारा क्राइटेरिया योग है और मनोयोग है, मनोयोग किसको होगा, संगी पंचेंद्रिय के लिए, कब होगा, पर्याप्त के क्या अपर्याप्त के, पर्याप्त के। तो अभी हमने गुणस्थान नक्की किए, फिर हमने जीव समास नक्की किया, अब पर्याप्ति आसान है ना बताना, 6 पर्याप्ति होगी और प्राण कितने हो गए, 10। इस तरह से सोचना है, अभी पढ़ेंगे एक एक। देखो, मनोयोगी जीवों के आलाप कहने पर आदि के 13 गुणस्थान, क्योंकि सयोगी के भी तो मनोयोग, इन मनोयोगी इन जनरल चल रहे हैं। अभी उसके मनोयोग के जो भेद प्रभेद करेंगे तो वो बात अलग हो जाएगी। जो सयोगी के नहीं है मनोयोग, उसके दो ही होते हैं, एक सामान्य से कहेंगे, फिर सत्य और अनुभव कहेंगे, और असत्य मनोयोग उनको नहीं होगा। तो वो उसकी जब बात करेंगे तो हम कहेंगे 12वें गुणस्थान तक, तो 13वें का नाम नहीं लेंगे, ख्याल में है ना। अभी तो मनोयोग इन जनरल बात चल रही है। तो देखो, मनोयोगी पेज नंबर 629, मनोयोगी जीवों के आलाप कहने पर, काय मार्गणा अपनी हो गई, अब मनोयोगी की बात चल रही है, आदि के 13 गुणस्थान, अयोगी को छोड़ देना है, योग वालों को लेना है और उसमें भी मनोयोग वालों को, एक संगी पर्याप्त जीव समाज,
या केवली जो समुद्घात करते हैं,
हाँ,
उस समय अपर्याप्त होते हैं, तो उस समय मनोयोग नहीं है उनका।
हाँ, परंतु यहाँ तो पर्याप्त ही जीव समाज लिया है, मनोयोग ऐसे भी उनको उपचार से है और उस समय उनको मनोयोग नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय उनके कारमाण का योग है, कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र का योग है, उनके योग निश्चित है, वहां मनोयोग होता ही नहीं उस समय। देखो, संगी पर्याप्त, हमें जीव समास नक्की किया, तो अभी हमको पर्याप्ति और प्राण समझना आसान है। छह पर्याप्ति और दसों प्राण होते हैं। कितने आचार्य मनोयोगियों के दस प्राणों में से वचन और काय प्राण कम करते हैं, किंतु उनका वैसा करना घटित नहीं होता है। यानी मनोयोग है ना, तो उस समय उनका अन्य योग नहीं है, ऐसा उनको कहना है। जिस समय मनोयोग है उस समय अन्य योग नहीं है, उस अपेक्षा से वो कहना चाहते हैं। परंतु वैसा घटित क्यों नहीं होता, क्योंकि मनोयोगी जीवों के वचन बल और काय बल, इन दो प्राणों की शक्ति पाई जाती है, इसलिए उसको दोनों को कहेंगे। इसलिए ये दो प्राण उनके बन जाते हैं। उसी प्रकार वचन बल और काय बल प्राण के निमित्त भूत पुद्गल स्कंध का अस्तित्व देखा जाने से उनके उक्त दोनों पर्याप्तियां भी पाई जाती है। पर्याप्ति पुद्गल स्कंध को भी किया लिखा है उन्होंने। मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम तो पर्याप्त या जीव में ही घटित करते हैं। ये 630 पेज पर हम जो पढ़ा पहली दो लाइन के, वचन बल और काय बल प्राण के निमित्तभूत पुद्गल स्कंध का अस्तित्व, उसको यहाँ पर्याप्ति कही उन्होंने। हम तो जीव की शक्ति की बात करते ना, इसको पुद्गल स्कंध को भी लिया। हाँ, इसलिए उसको उस अस्तित्व के कारण उनको पर्याप्तियां कहने में आती है। इसीलिए उक्त दोनों पर्याप्तियां भी उनके बन जाते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं ये, फिर हम ये क्या कहना चाहते थे कि मनोयोगी जीव है, मनोयोगी जीव है तो उसमें कौन कौन से प्राण है, तो दसों प्राण है। कुछ आचार्य कहते हैं वचन बल प्राण और काय बल प्राण यहां स्वीकार नहीं करना, परंतु वो घटित नहीं होता, क्योंकि उस समय उनके योग भले वो नहीं है, परंतु उसकी पुद्गल स्कंध की जो अस्तित्व है, जिसको पर्याप्ति कह रहे हैं, ये प्राण के कारणभूत, उस कारण उनके वे प्राण भी बन जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। इसलिए उक्त दोनों पर्याप्तियां भी उनके बन जाती है। यानी प्राण भी बन जाते हैं क्योंकि दो प्राणों की शक्ति है, और पर्याप्तियां भी बन जाती है। प्राण आलाप के आगे चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। एक्चुअली यहां 10 प्राण लिए और 13 गुणस्थान लिए हैं, तो चार प्राण भी लेने पड़ेंगे। हमने टेबल में डाले हैं, 242 नंबर का टेबल है ना, 630 पेज पर नीचे टेबल, हाँ, उसमें प्राण में 10 लिखे हैं, तो उन्हें चार प्राण भी डाले सहयोगी के। आगे देखेंगे, क्योंकि उनके अलग बनते हैं ना संख्या, इसलिए उसको दे लेना वहां पर, क्योंकि सामान्य से मनोयोग की बात चल रही। तो चार संज्ञा तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है, चारों गतियां, क्योंकि मन वाले जीव कौन से गति में है, चारों गति में। पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि नीचे के जीवों को तो असंगी जीव है, उनमें तो मन है नहीं। त्रस काय, अभी मनोयोग कहने से उसके कितने भेद हो गए, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये चार मनोयोग। हमने वहां दो योग भी डाले हैं, दो मनोयोग जो केवली के होते हैं, उनके दो ही होते हैं, सत्य और अनुभय। इसलिए चार योग और दो योग ऐसा हमने उसमें डाला था पहले पेंसिल से। तीनों वेद वालों को हो सकता है, और अपगत वेद स्थान भी उसमें है। चारों कषाय है तथा अकषाय स्थान भी है, क्योंकि तेरहवें को इंक्लूड करना है ना हमको। आठों ज्ञान है, सातों संयम है, पहले 13 गुण स्थान है, तो उसमें जो जो पॉसिबल है वो सब हम कहेंगे। चारों दर्शन है, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं हैं, भव्य सिद्धिक भी है, अभव्य सिद्धिक भी है, छहो सम्यक्व है, संगिक है, क्योंकि सारे तो संगी जीव है ना, मनोयोग उसके बिना नहीं होगा, परंतु केवली संगी असंगी से पार है, फिर भी उनको मनोयोग तो कहेंगे। तथा संगिक और असंगिक इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। आहारक, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मनोयोग नहीं है इसलिए अनाहारक वाला यहां नहीं लिया, और अयोगी के पर्याप्त अवस्था में अनाहारक होते हैं परंतु उनके योग नहीं है, इसलिए जिसको मनोयोग है वो आहारक ही है, ये कहना चाहते हैं। क्या बात? हाँ, इसलिए अकेला आहारक लिया। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। अब मनोयोगी जीवों में कौन से गुणस्थान देखे अभी अभी हमने? एक से तेरा, अभी उस पर घटाएंगे एक एक को। तो उसमें मिथ्या दृष्टि में पर्याप्त जीव हो गया कि अपर्याप्त? पर्याप्त को ही लेना, सारे पर्याप्त पर्याप्त को ही लेना, अपर्याप्त में मनोयोग नहीं होता है ना। हाँ, तो मनोयोगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दसो प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, जैसे हमने ऊपर देखा था, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, तीनों वेद, चारों कषाय, वहां तो हमने अपगत वेद वगैरह अकषाय भी लिया था, यहां तो अकेला मिथ्या तो गुणस्थान लेना है, तीनों अज्ञान, असंयम आदि के, असंयम कॉमा लगाना, संयम में असंयम, फिर दर्शन में आदि के दो दर्शन, चक्षु चक्षु दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्या तो क्योंकि उन्होंने गुणस्थान बताया ये, संगिक आहारक और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस तरह से अभी सांसाधन में क्या डिफरेंस होगा, वहां पर भी सभी तो पर्याप्तों को ही लेना है, मनोयोग है। सांसाधन में कितनी गतियां लेंगे? चार, बहुत अच्छा, पर्याप्त जीव है। जब सांसाधन अपर्याप्त था तो हमको नरक तक छोड़ना था, है ना। मनोयोगी है तो पर्याप्त है, पर्याप्त है तो चारों गति में तो जीव सांसाधन गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? अभी यहां से आगे सारे भव्य सिद्धिक कहने पड़ेंगे, मिथ्या दृष्टि में भव्य भी थे अभव्य भी थे, अब यहां से आगे सारे भव्य ही है। तो सांसाधन में तो ज्ञान वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, तीन अज्ञान होगी यहां पर भी, आगे के जो गुणस्थान है उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मिश्र में तीन मिश्र ज्ञान कहेंगे, चौथे वाले को तीन ज्ञान कहेंगे, इस तरह से देखो पढ़ेंगे हम इसको भी। मनोयोगी सासाधन समय श्री जीवों के आलाप कहने पर एक सासाधन गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया। देखो सामान्य से हमने सासाधन गुणस्थान देखा था तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों कहना पड़ता था, मनोयोग कंडीशन लगाई इसलिए पर्याप्त आ गए। छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारो संज्ञाए, चारो गतिया, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम आदि के दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं। अब ये छह लेशाएं कब तक कहेंगे हम द्रव्य और भाव से? कौन से गुणस्थान तक छह लेशा होगी? चौथे तक। हाँ, द्रव्य से तो छह तो हम तेरहवे तक कहेंगे, भाव से चौथे तक छह होगी, पांचवें छठे सातवें को तीन शुभ और आठवें के ऊपर शुक्ल लेश। हाँ, भव्य सिद्धिक, देखो यहां से भव्य सिद्धिक है सारे, सांसाधन सम्यक्त, संगिक आहारक, साकार उपयोगी और नाकार उपयोगी होते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बार हमको समझ में आया और बेबी इस नाम मालूम है और किसको क्या लगाना है, तो थोड़ा सोच के लगा लें, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी ना, तो स्मृति भ्रंश नहीं होगा बुढ़ापे में। उसकी दवा है ये? हाँ, अल्जाइमर नहीं होगा। ऐसा कहते रोज थोड़ा नया नया याद करो और ये ऐसी बातें जरा, नहीं तो क्या होता है जंग पकड़ता है मन को, नहीं समझे, बुद्धि नहीं ज्यादा लगती इतनी। स्कूल में हम पढ़ते थे तो कितना नया नया पढ़ते थे, है ना, और अभी पढ़ाई समाप्त तो हो गई, कोई धंधे में लग गया, कोई घर में, तो रोज का रूटीन है, उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगती। दूसरा कुछ सोचते सोचते इधर हम चलता है अपना काम, है ना। तो फिर वो मन भी आलसू हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, मनोयोगी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों के आलाप कहने पर। अब तीसरा गुणस्थान में क्या डिफरेंस होगा, भव्य होगे कि अभव्य होगे? मिश्र ज्ञान होगे यहाँ पर, है ना, तीन मिश्र ज्ञान। और गतियां? चारों गतियां। और सम्यक्त्व में सम्यक मिथ्यात्व नाम नहीं रखेंगे, सम्यक्त्व का प्रकार। देखो, एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, ये तो गुणस्थान तो पहले उन्होंने बता ही दिया। एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया दसो प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काएं, चारों मनोयोग। अभी मनोयोगी की बात है इसलिए अन्य योगों को नहीं लिया यहाँ पर। जिसको मनोयोग है उसको अन्य योग होते हैं, उसकी बात नहीं चल रही। प्राणों में भी तो सभी प्राणों को लिया योगों में, क्योंकि मनोयोग जो क्राइटेरिया है, एक समय में जिसको एक योग है उस समय अन्य नहीं है, यह सामान्य से कह रहे हैं, इसलिए चारों को ले लिया। जब मनोयोग का एक एक भेद कहेंगे तब एक ही भेद का नाम लेंगे। ख्याल में हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो उसको ख्याल में रखकर हम आगे की बात करेंगे। तो मनोयोग की बात है तो योग की कॉलम में हम केवल मनोयोग ही लिखेंगे, तो चार प्रकार के होते हैं इसलिए चार कहेंगे। तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, यानी तीन मिश्र ज्ञान कहेंगे हम इसको। असंयम आदि के दो दर्शन, देखो तीसरे गुणस्थान तक अवधि दर्शन को नहीं लेना है, आगे लेना है। द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धि, सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे गुणस्थान तक दो ही लेना, विभंग नहीं होगा, मिश्र ज्ञान होगा, मिश्र ज्ञान, पर उसमें अवधि दर्शन नहीं लेना। वो उसमें शायद कहीं कहीं लिया है ना तीन, ओरिजिनल में क्या लिखा है, दो है कि तीन? कहां तक पढ़ा हमने, आदि के दो दर्शन, द्रव्य भाव से छो लेशा है, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब मनोयोगी में चौथा गुणस्थान आप लगाएंगे प्रतिभा तक, बोलो गुणस्थान चौथा, जीव समास पर्याप्त, पर्याप्ति प्राण दस, संज्ञा हाँ, गति चारों गति हाँ, इंद्रिय में पंचेंद्रिय, काय में त्रस्काय, योग में चार मनोयोग, वेद तीनों कषाय हाँ, अभिज्ञान हाँ तीन, संयम असंयम तीन दर्शन, लेशा हाँ, द्रव्य भाव से छे छे, भव्य भव्य, सम्यक तो कौन कौन से हो सकते हैं, तीनों हाँ, बहुत अच्छा। फिर संगी संगी, आहारक आहारक, बहुत अच्छा हाँ। अब पढ़ेंगे इसको, मनोयोगी असंयत सम्य दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर। एक अविरत सम्य दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, दसो प्राण, चारो संज्ञाएं, चारो गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारो मनोयोग, तीनों वेद, च चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छहो लेशाय, भव्य सिद्धिक, औषमिक शायिक और क्षयमिक, ये तीन सम्यक संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी आपको पांचवें गुणस्थान का लगाना है, मनोयोगी या संयता संयत है। गुणस्थान तो बताया कौन सा, पांचवा। जीव समास कौन सा, पर्याप्त का अपर्याप्त? पर्याप्त मनोयोगी है ना, पर्याप्त है। ऐसे भी पांचवें गुणस्थान में पर्याप्त आलाप नहीं लगता है। हाँ, तो आपने बता दिया संगी पर्याप्त, पर्याप्तिया। मैं एक एक नाम बताऊं आपको, बताना है संख्या। पर्याप्तिया प्राण, हाँ संज्ञा गतिया, हाँ यहाँ अटकने का स्थान है, पांचवा गुणस्थान है तो दो गतिया। हाँ इंद्रिया पंचेंद्रिय, हाँ काय, काय कौन सा है, स्थावर के त्रस, त्रस काय, हाँ योग मनोयोग है तो चार प्रकार बताना है। हाँ वेद कौन से, वेद वालों को होगा मन, कौन से होते हैं वेद के, वेद कौन से होते हैं उनके, स्त्री का पुरुष के अनुपुसक, पुरुष को, स्त्रियों को मन नहीं होता, तो कौन से वेद हो गए इसमें, तीन हो गए। हाँ बस यही बताना है आपको। कसाय चारों ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं,
ज्ञान
सू के कू, सू सू, अच्छा। संयम का नाम क्या है यहाँ पर,
संयम,
बहुत अच्छा, संयम संयम। दर्शन,
दर्शन
तीनों, बहुत अच्छा। लेशा
होंगे,
द्रव्य से छह, भाव से, हाँ भाव से तीन, बहुत अच्छा। भव्य, हाँ सम्यक तो कौन कौन से है,
तीनों
है। संगी,
संगी
है। आहारक, आहारक है। और उपयोग दोनों है, बहुत अच्छा। अभी समझ में आया ना कि उसे लगाना है। अभी पढ़ेंगे, देखो यहाँ 633 पेज, मनोयोगी संहिता संयत जीवों के आलाप कहने पर, एक देश विरत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाए, तीर्यंच गति और मनुष्य गति, ये दो गतियां। इसके आगे के गुणस्थानों में गति कौन सी लगाएंगे,
मनुष्य
गति, क्योंकि राजों के ना संयतों के। हाँ पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, तीनों वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, संयमा संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छोलेश है, क्योंकि शरीर तो वही है ना, हा? भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेश है, जिसको पीत भी कहते हैं हम, पीत पद्म और शुक्ल। भव्य सिद्धिक, औषमिक शायिक और क्षौषमिक, ये तीन सम्यक संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। लक्ष्मी जी आप प्रमत्त संयत के आप आलाप, मनोयोगी प्रमत्त संयत, हाँ गुणस्थान छठा, संगी पंचे, हाँ पर्याप्तिया छः, दस संज्ञा चार, हाँ गति मनुष्य गति, इंद्रिय काय योग, हाँ चार मने, वेद हाँ कषाय, ज्ञान चार, बहुत अच्छा। यहाँ से मन परे ज्ञान किसी को हो सकता है ना, हाँ इसलिए चार ज्ञान, संयम परिहार विशुद्धि, छठा गुणस्थान ले ना, छठा सातवें में परिहार विशुद्धि को भी ले सकते हैं। हाँ दर्शन तीन, लेशा हाँ भाव से तीन, भव्य भव्य सम्यक्त्व तीन, हाँ संगी आहार, हाँ अर्थ, बहुत अच्छा। अभी हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर समझ में आती है कि बात में, हाँ मनोयोगी प्रमत्त संयत जीवों के आलाप कहने पर, एक प्रमत्त विरत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास। आप कहेंगे वो छठे गुणस्थान वालों के वो आहारक वगैरह बनाते, उसकी भी जब अपर्याप्ति चल रही है, पर्याप्ति यानी पूर्णता नहीं है तब तक मनोयोग नहीं होगा उस अवस्था में उनके। हाँ, नहीं लेना उस समय उनके मनोयोग नहीं है। मनोयोग बता दिया ना, वो आहारक मिश्र का योग हो गया उनका। हाँ, और उसकी अपर्याप्त, और उसकी भी अपर्याप्त अवस्था चल रही है। देखो ये कहाँ कहाँ पढ़ा हमने, संगी पर्याप्त जीव समाज, छह पर्याप्त दशो प्राण, चारो संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारो मनोयोग, तीनों वेद, चारो कषाय आदि के चार ज्ञान है ना, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीन संयम, छठा गुणस्थान है वहां क्या क्या हो सकता है उसकी बात देखना है। आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं और भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक शायिक और क्षौपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। तीनों वेद, नौवे गुणस्थान तक, पहले भाग तक तीनों वेद लेंगे, वो भी जीव तीनों वेद वाले, वो भाव से वेद लेना है ना, द्रव्य से नहीं। जब वेद मार्गना आती है तो उसमें द्रव्य वेद, भाव वेद कौन से, उसकी चर्चा। अब अप्रमत्त गुणस्थान में क्या होगा, विशेषता क्या होगी? हाँ, एक संज्ञा जाएगी, तीन संज्ञा होगी, अभी आहार संज्ञा नहीं रहेगी। कौन सी रहेगी? हाँ, भय में, बहुत अच्छा। हाँ, अभी जो गुणस्थानों में देखे, क्योंकि ये सारे पर्याप्त होंगे है ना, सातवा आठवां नौवां दसवां वगैरह जो कोई समय हमने गुणस्थानों में देखे थे वही यहाँ पर होंगे, और मनोयोग भी चार चार होंगे। कब तक? बारहवें तक। तेरहवें में मनोयोग क्या होंगे? दो ही बताएंगे। हाँ, सत्य और अनुभय। देखो यहाँ पढ़ेंगे, अप्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक मनोयोगी जीवों के आलाप मूल ओघालापों के समान ही है। मूल ओघालाप ने जो हमने मूल में गुणस्थानों में लगाए थे वे, विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय बारहवें गुणस्थान तक चारों ही मनोयोग कहना चाहिए। जब हम मूल में देखते तो चार मनोयोग, फिर चार वचन योग, औदारिक काय योग, ऐसा गिनते थे। अब यहाँ हमारा क्राइटेरिया योग का है और वो भी मनोयोग का, इसलिए चार मनोयोग इतना ही कहना है और बाकी बातें नहीं कहना। अन्य जो कॉलम लगाए वो सब उसने वैसे ही हो गए। तो कहते कि बारहवें गुणस्थान तक चारों ही मनोयोग कहना चाहिए, किंतु सहयोग केवली के, वो के शब्द डालना वहां, सहयोग केवली के सत्य मनोयोग, पेज नंबर 634 तीसरी लाइन, सहयोगी केवली के सत्य मनोयोग और असत्य मूषा अर्थात अनुभय मनोयोग, ये दो ही मनोयोग कहना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है, आप अश्विन भाई दसवें गुणस्थान की बात लगा लो, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, मनोयोगी में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के आलाप को हो आप। हाँ, गुणस्थान दसवा, क्या नाम है? सूक्ष्म सांप्राय, जीव समास, हाँ, पर्याप्तिया, प्राण, संज्ञा, एक परिग्रह संज्ञा है अभी दसवें, हाँ, संज्ञा एक, गति एक,
इंद्रिय
पंचेंद्रिय, काय
काय,
त्रस्त योग,
चारों मनोयोग,
हाँ, वेद,
अपगत वेद,
अपगत वेद, देखो अभी दसवा गुणस्थान है, वेद नहीं है, अपगत वेद कहना।
कषाय एक,
हाँ, कषाय एक, कौन सा?
लोक,
लोक, सूक्ष्म लोक, हाँ, ज्ञान,
ज्ञान चार ज्ञान,
चार ज्ञान, संयम,
सूक्ष्म
सूक्ष्म सांप्राय संयम, क्या कुछ बदलना है?
नहीं नहीं नहीं, सामायिक छेद
लेकिन, अरे सूक्ष्म सांप्राय संयम है, जरा पक्का बताओ,
सूक्ष्म सांप्राय, सॉरी
पहले गलती से ठीक बताया,
नहीं नहीं नहीं,
देखो संयम का नाम यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय संयम है, संयम का नाम ही वो है। हाँ,
दर्शन तीन,
दर्शन तीन, लेशा,
द्रव्य से भाव से एक,
अभी शुक्ल लेशाई की कहने हाँ।
भव्य
भव्य है सम्यक्त्व बताओ
शायिक और ऑप्शन
हाँ द्वितीय ऑप्शन वाला भी हो सकता है और क्षायिक भी हो सकता है यहाँ वेदक नहीं कहना क्षौपशमिक नहीं कहना दस वक्त क्योंकि क्षौपशमिक के साथ कोई श्रेणी वाले गुणस्थान नहीं हो गया ख्याल में यही बात
हाँ संगी
संगी
आहारक
आहारक
शाकार
बहुत अच्छा आप ग्यारहवें गुणस्थान पर लगाएंगे लगा लो आसान है ना हाँ उपशांत मोह गुणस्थान जीव समास संगी पर्याप्त हाँ पर्याप्तिया प्राण हाँ संज्ञा एक भी नहीं हाँ उसे उपशांत संज्ञा कहो या तीन संज्ञा कहो कई बात है उपशांत संगी कहेंगे हाँ गति हाँ इंद्रिय हाँ काय त्रस्का योग मनोयोग है ना तो चार बताना हाँ वेद कितने हो गए हाँ तो अभी क्या है तो क्या कहेंगे अपगत वेद बहुत अच्छा द्रव्य वेद की बात नहीं कर रहे वो तो रहेगा वो द्रव्य से जो पुरुष चौदहवें तक रहेगा उसकी बात नहीं शरीर है तो उसका द्रव्य का वेद रहेगा उसकी बात नहीं यहाँ पर भाव वेद की बात है नौवे तक उसका वेद का उदय है अब उसको अपगत वेद कहेंगे हाँ कषाय अकषाय बहुत अच्छा ज्ञान केवलियन हुए क्या अभी तक
नहीं हुआ
तो चार ज्ञान हाँ संयम अभी यहाँ कौन यथाख्यात ग्यारहवा बारहवा तेरहवा यथाख्यात संयम है हाँ दर्शन केवल दर्शन के बिना
केवल दर्शन
तीन हाँ लेशा द्रव्य से
छह
भाव से एक शुक्ल बहुत अच्छा हाँ आप पक्की हो गए हाँ भव्य भव्य और सम्यक तो कौन सा रहेगा यहाँ पर क्षायिक बहुत अच्छा सम्यक की अपेक्षा क्षायिक है बोले उपशम श्रेणी चढ़ रहा है किंतु तो क्षायिक समय दृष्टि भी चढ़ सकता है इसलिए सम्यक तो कौन सा है तो औपशमिक या क्षायिक संगी है आहारक आहारक और दोनों उपयोग वाले ख्याल में इस तरह से हमने ये गुणस्थानों में पहले देखा था यहाँ पर भी ऐसा है योग के कॉलम में हम चार मनोयोग कहेंगे तो बारहवें तक के जो हमने मूल में गुणस्थानों में लगाया था वैसे यहाँ पर लगाना संयोग केवली में दो ही योग लेना है मनोयोग में दो ही योग लेना बारहवें तक हाँ बारहवें तक चारों लिए थे इतना डिफरेंस लिया हमने अभी आगे बढ़ेंगे अभी ये मनोयोग का एक एक भेद लेंगे सत्य मनोयोग के लिए गुणस्थान बताएंगे कौन कौन से लक्ष्मी आप गुणस्थान कौन सा होगा सत्य मनोयोगियों के एक से तेरह और जीव समाज वही तो जो हमने मनोयोगी पर लगाए वही से लगाएंगे ना सत्य मनोयोग सभी जीवों के हैं देखो सत्य मनोयोगियों के आलाप हम पढ़ेंगे यहाँ पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोगी केवली गुणस्थान तक मनोयोगियों के समान है परंतु अभी हम योग वाले कॉलम में क्या लिखेंगे एक सत्य मनोयोग क्योंकि उन्होंने बता दिया सत्य मनोयोग जब मनोयोग इतना ही कहा था तो चारों भेदों को लेना है अब उन्होंने उसका नाम ले लिया सत्य मनोयोग वाले तो सत्य मनोयोग वालों को कौन सा मनोयोग होगा तो सत्य मनोयोग होगा ख्याल में आई बात उसके नीचे सत्य मनोयोग लिखना पड़ेगा और बाकी तो कथन ऐसा ही होगा तो देखो सत्य मनोयोगियों के आलाप मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग केवली गुणस्थान तक मनोयोगियों के समान मनोयोगी ने सामान्य से जो हमने देखा अभी अभी विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय एक सत्य मनोयोग आलाप ही कहना चाहिए इसी प्रकार से असत्य मृषा अर्थात अनुभय मनोयोगियों के भी आलाप होते हैं क्योंकि वो भी पहले से तेरहवें तक है विशेष बात यह है योग आलाप कहते समय एक असत्य मृषा असत्य मृषा ने जो सत्य भी नहीं जो मृषा ने खोटा भी नहीं असत्य मृषा यानी अनुभय अनुभय दोनों ही नहीं है जो सत्य भी नहीं जो असत्य भी नहीं हमने आपको पुकारा, सोनी भाई आज क्लास है आना, तो हमने सत्य बोला कि असत्य बोला कि क्या बोला, उस किसी का नाम लेकर पुकारना तो ये सत्य असत्य कुछ नहीं उसमें, ये कहना चाहते हैं। सत्य भी नहीं असत्य भी
अभी
नहीं,
हमने
नहीं।
बोला
वो पूरा वाक्य नहीं बोलो, केवल सोनी भाई इतना ही,
अश्विन भाई,
अश्विन भाई
वो तो जीव है, हमने उसको अश्विन कहा,
नहीं नहीं वो नहीं लेना है यहाँ पर। और ये बोलने की भी बात नहीं, वो तो ऐसे सोचने की जानने की बात है। बोलने को ये वचन योग कहेंगे और उसका जानने को मनोयोग कहेंगे। हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलने में वचन में उसको बताते हैं।
एक हमेशा मेरे को क्वेश्चन देता है कि पांच महाव्रतधारी मुनिराज है, सत्य महाव्रत उन्होंने धारण किया है, तो उनका योग क्या असत्य भी मनोयोग चलेगा?
बिल्कुल चलेगा, बारहवे तक है ना, यहाँ क्या लिखा
नहीं है,
तो फिर क्यों प्रश्न है?
नहीं पर वहाँ पे तो उन्होंने महाव्रत तो धारण किया,
महाव्रत उन्होंने धारण किया
हाँ।
तो उनके जानने में कुछ असत्य बातें होगी ना, जैसे करना नियोग के कुछ नियम नहीं जान रहे वो, क्या उनके केवल ज्ञान है? तो कुछ किसी बारे में उनका ज्ञान नहीं भी है ना, ख्याल में आते हैं बस, वचन और उसका ही वैसे ही मनोयोग, वो जानने में मनोयोग लगाना और बोलने में वचन योग लगाना, गलत भी जानने में आता है, बोलने में भी आता है, होता है ऐसा, उसमें कुछ बात नहीं। आप कहेंगे वो श्रेणी में कहाँ बोल रहे हैं, वहां पर भी अंतर जल पर रूप कुछ चल रहा है, वो अनुभव का उनको आहा है, उनके आह्लाद है, वो तो तत्व जानने के प्रति प्रमोद हो रहा है उनको, इसलिए आहा हा शब्द निकलते ना गुरुदेव गांधी स्वामी हमेशा कहते आहा हा हा आहा हा, क्यों कह रहे? अरे वो उसकी महिमा है तत्व, उन्होंने हाँ, और उसको बता जितना जाना उतना बताते नहीं, बता नहीं सकता कोई भी जीव, केवल ज्ञानी भी जितना जानते उसका अनंतवा भाग उनके वाणी में आता है, केवली के क्या कहा, केवली जितना जानते उसका अनंतवा भाग उनकी ओमकार ध्वनि में आता है, अनंतवा, और जितना ओमकार ध्वनि में उसका अनंतवा भाग गणधर ग्रहण करते जानते हैं, और गणधर भी जितना जानते उसका कितना कम अंश हो लिखित रूप से उसमें, लिखित कहो या द्वादशांग की जो रचना की उन्होंने मौखिक उसमें आता है। हम भी कहते हैं हमको समझ में आता है, हम बोल नहीं सकते, कितनी बार बोलते ना हम ऐसा, बोल नहीं जाओ तो हम नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जैसे हमको आनंद हुआ या कुछ रोना आया कुछ दुख हुआ, हम कितना उसको प्रतीत करते अनुभव करते और कितना बोल सकते हैं, है ना ऐसा है।
ये जो असत्य वचन योग की बात चल रही थी तो उसमें हमारे जैसे लोग जानबूझकर झूठा बोलते हैं वैसा उनका नहीं होता है, ऐसा अर्थ लेना क्या?
हाँ, असत्य ने जो सही नहीं है ऐसा लेना है, जो सोच समझकर असत्य ने वो तो वहाँ तो कषाय भी है ना कि छुपाने की मायाचारी वाली,
हम जानबूझकर कभी कभी झूठ बोलते हैं
ना, हाँ घर में है तो नहीं ये कह रहे थे हाँ, पर है ना हाँ, वो मायाचारी है और झूठ तो है ही है,
झूठ इसलिए वैसा झूठ मुनि नहीं बोलते हैं ऐसा मुझे लगता है,
ऐसा झूठ यानी किसी की बहुत हिंसा होती है और वो मालूम नहीं वाला बहुत बात भी कहेंगे मौन भी रखेंगे तो उस अपेक्षा से उसको असत्य कह भी सकते हैं, परंतु वो उनका अहिंसा नामक महाव्रत पल रहा है वहाँ पर, ऐसी बात आती है ना कोई शिकारी उनको पूछे तो बोलेंगे नहीं मौन रखेंगे या उल्टा भी उत्तर देंगे तो उसको असत्य का दोष ऐसा पाप नहीं लगेगा, महाव्रत उनका भंग नहीं होगा क्योंकि वो अहिंसा का महाव्रत पाल रहे हैं, वो बात अलग है, पर ये बारहवें गुणस्थान तक ये पाया जाता है। हम तो उसको प्रवृत्ति में सोचते हैं, देखो ये सत्य मनोयोगी की बात कहते उसमें योग आलाप में सत्य मनोयोगी इतना लिखा, और जब असत्य मुषा अनुभव की बात होगी तो अनुभव वचन ये सॉरी अनुभव मनोयोग लिखना, क्योंकि ये चारों ही पहले से तेरहवें तक होते हैं, और जब असत्य की बात आ गई और उभय की बात आ जाएगी तो एक से बारह, हाँ
चारों पहले से तेरहवें तक,
चारों ने दो सत्य और अनुभव पहले से 13वें तक, इसलिए इन दोनों के बारे में बताया 13वें तक कहो। अब मृषा मनोयोगी, मृषा ने खोटा असत्य, मृषा मनोयोगी जीवों के आलाप कहने पर, अभी यहाँ 12 गुणस्थान को ही हम इंक्लूड करेंगे, तो आदि के 12 गुणस्थान, बाकी तो सभी वैसे ही बातें करेंगे। एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञा तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, मृषा मनोयोग, मृषा का अर्थ होता है असत्य, तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, जिसे हमने पहले लगाए थे वैसे यहाँ पर भी लगाना, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, क्योंकि 12वें तक लेना है ना, इसलिए अकषाय को भी लेना, 11वें 12वें में अकषाय कहेंगे, केवल ज्ञान के बिना 7 ज्ञान, वहां 13 गुण स्थान लेके तो सभी ज्ञान लिए थे, सभी 7 संयम तो ले सकते हैं क्योंकि यथाख्यात तो प्रकट हो गया 11वें 12वें के, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी लेना है ना उसमें, 6 सम्यक्व, संगिक आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। टेबल, हाँ देखो नीचे जो मृषा मनोयोगी है ना, उसमें वेद के नीचे 3 लिखा है और उसमें अवेद अयोग लिखा है, अयोग के बदले में अपगत वेद लिखना है, पेज नंबर 635 पर नीचे का जो टेबल है 249 नंबर का, मृषा मनोयोगी जीवों के आलाप, उसमें वेद वाला जो कॉलम है मिला सम, क्या लिखा है उसके नीचे सोनीबेन, 3 के नीचे क्या लिखा है, हाँ तो वेद में अयोग कहाँ से आया, वहाँ क्या लिखना था, अपगत वेद, हाँ वो लिखो, अयोग निकाल कर अपगत वेद लिखो नीचे। हाँ अपगत वेद किया था हमने, तो मृषा मनोयोगी जीवों के ऊपर से 4थी लाइन पढ़ रहे, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक के आलाप मनोयोगी जीवों के आलापों की, मनोयोगी ने सामान्य से देखा, डिफरेंस क्या होगा, योग के कॉलम में मृषा मनोयोग लिखेंगे, विशेष बात यह है कि विशेष का अर्थ होता है डिफरेंस इतना है कि योग आलाप कहते समय एक मृषा मनोयोग आलाप ही कहना चाहिए, इसी प्रकार सत्य मृषा यानी उभय, सत्य भी है और मृषा भी है, उसको उभय हम कहेंगे, मनोयोगियों के भी आलाप कहना चाहिए, वो ऐसे ही हो गए, वो भी पहले से 12वें गुणस्थान तक हो गए, उनमें भी यही समय ऐसी कंडीशन होगी, योग में उसको उभय वाला लिखेंगे। अब वचन योगी जीवों के आलाप कहने पर, मनोयोगी में कौन सा लिया था हमने जीव समास, संगी पर पंचेंद्रिय, पर्याप्त की अपर्याप्त, पर्याप्त, अभी आप वचन योगी के आलाप में जीव समास कौन से कहेंगे, द्विलिंगी से, हाँ असंगी और संगी पर्याप्त, ख्याल में आएगा, तो जीव समास में डिफरेंस पड़ेगा, देखो अभी तो जीव समास में डिफरेंस पड़ेगा, तो पर्याप्तियों में सबको गिनो, प्राणों में सबको गिनो, मनोयोगी का आसान था, संगी पंचेंद्रिय की बात घटित की थी, अब यहाँ द्विंद्रिय से सब बात सोचनी पड़ेगी, देखो तो वचन योगी जीवों के आलाप कहने पर, ये सामान्य से वचन योगी इतना ही लिया, तो वचन योग 13वें गुणस्थान में होता है कि नहीं होता, हाँ होता है, होता है, केवली की वाणी छुटती तो आदि के 13 गुणस्थान। अब जीव समास कौन से देखो, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्रिय जीव संबंधी 5 पर्याप्त जीव समास, अपर्याप्त अवस्था में वो वचन योग नहीं है, 6 पर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, क्योंकि द्विंद्रिय से लिया ना इसलिए 5 को भी लिया, संगी पंचेंद्रिय से लेकर द्विंद्रिय जीवन तक क्रमशः दशो प्राण, नौ प्राण, केवल वो पर्याप्तों की गिनना है, आठ प्राण, सात प्राण और छह प्राण, यह हमने ऐड किया है सहयोगी जिनके चार प्राण होते हैं। सहयोग केवली के उन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, हमने वहां एक वाक्य डाला है। क्योंकि उनको भी वचन योग है तो उसको भी ले लेना, वो कॉलम आगे के कॉलम में लिखा है क्या? चार नेक्स्ट पेज पर हमने जो वचन योगी जीवों के आलाप है ना, 250 नंबर का टेबल, टेबल टेबल पर कहाँ चले आप, एक पेज आगे, उसमें प्राण के नीचे 10, 9, 8, 7, 6 लिखे, उसके नीचे चार लिखकर वो सहयोगी के ऐसा लिखो समझने के लिए अपने। अब आगे पढ़ेंगे पर्याप्ति, मन पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति से उत्पन्न हुई शक्तियों को मनोबल प्राण और कायबल प्राण कहते हैं। ये पर्याप्ति ये कारण है और उसका कार्य जो है वो प्राण है। वे शक्तियां भी उनके उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर जीवन के अंतिम समय तक नष्ट नहीं होती है, और जिस कारण से मनोयोग वचन योग और काय योग प्राणों में नहीं ग्रहण किए गए हैं, इसलिए वचन योगियों के वचन योग के निरुद्ध अर्थात युक्त अवस्था के होने पर भी दशो प्राण होते हैं। ऊपर क्या लिखा है? मन शरीर पद्धति हिंतो उपन्न सत्यो शरीर मनोबल पाणा उच्चंती तावो वे उपन्न समयादो जाओ जीवित चरिम समोती तावनो मीणसंती जैन मन वची काय जोगा पाणेसु न गहिदा तेन वची जोगे निरुद्धे भी दसपाणा हवंती। ये निरुद्ध का अर्थ उन्होंने युक्त कैसे किया? निरुद्ध करना रोकना ना। निरुद्ध का अर्थ क्या होता है? निरुद्ध का अर्थ सहित होता है वचन योग से निरुद्ध। अच्छा अच्छा, ओ हेलो मी युक्त अवस्था दशो प्राण, यानी जब वचन योग है तो अन्य योग नहीं है, इसलिए वहां बाकी प्राण लेना कि लेना नहीं लेना ये प्रश्न था। इसे लेना क्योंकि वहां उसका शक्ति पाई जाती है। प्राण आलाप के आगे चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है, क्योंकि उनस्थान हम 13 ले रहे हैं ना, 11, 12, 13 को क्षीण संज्ञा होगी। चारों गतियां द्विंद्रिय जाति को आदि लेकर चार जातियां त्रस्काय चारों वचन योग, क्योंकि हमने वचन योग सामान्य से लिया है तो चारों को कहना पड़ेगा। तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, आठों ज्ञान सातों संयम, क्योंकि हम 13 गुण स्थान ले रहे हैं, चारों दर्शन द्रव्य भाव से छह लेशाएं भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व को भी लिया इसलिए अभव्य भव्य सब ले लिए, छह सम्यक्त्व संगिक असंगिक तथा संगिक और असंगिक, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं, यह हमने एक वाक्य डाला है, तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं, क्योंकि 13वें वाले को भी लेना है तो युगपत वाला भी स्थान लेना इसमें एक। अब वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर वचन योगी सम्य दृष्टि कहेंगे या वचन योगी सासाधन वाले कहेंगे तो जीव समाज कौन से हो गए? पंचेंद्रिय हो गए, पर्याप्त हो गए। अब यहाँ वचन योगी मिथ्या दृष्टि कहने से कौन कौन से जीव आ गए? वो द्विंद्रिय से सबको लेना पड़ेगा, ख्याल में यही बात। सासाधन के आगे सब मन योगी के समान कहेंगे, मिथ्या दृष्टि के लिए द्विंद्रिय को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। अब ये वचन योग भी पर्याप्त अवस्था में होता है, इसलिए सब पर्याप्त जीव समास, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। हाँ, सत्य लेंगे तो अनुभव वालों में, इसमें बाद में वो बताएंगे। सामान्य से तो सबको लेना है। तो द्विइंद्रिय जीवों से लगाकर संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की अपेक्षा पांच पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, पांच पर्याप्तिया, दशो प्राण, नौ प्राण, आठ प्राण, सात प्राण और छह प्राण। द्विइंद्रिय तक आना है और मिथ्या दृष्टि है, इसलिए अन्य किसी के नहीं बताना, यहाँ पर सहयोगी के नहीं लेना। चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, द्विइंद्रिय जाति को लेकर आदि लेकर चार जातियां, त्रस्काय, चारों वचन योग, वचन योग के कॉलम में वचन योग लिखना केवल, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, मति श्रुत और कुअवधि है, कुमति कुश्रुत और विभंग, असंयम आदि के दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि। शासन के आगे सारों को हम भव्य सिद्धि कहेंगे। मिथ्यात्व, संगिक असंगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। सासाधन सम्यदृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक के वचन योगी जीवों के आलाप मनोयोगी जीवों के आलापों के समान होते हैं। ये योग के कॉलम में हम वचन योग लिखेंगे। विशेष बात यह है, वचन योग आलाप कहते समय चार वचन योग कहना चाहिए, योग आलाप कहने पर। सहयोगी केवली जिनके सत्य वचन योग और असत्य मृषा वचन योग, ये दो ही वचन योग होते। जब तेरहवें गुणस्थान की बात आएगी तो उसमें दो ही लेना, बाकी बारहवे तक चार योग लिखना। सत्य वचन योग के आलाप सत्य मनोयोग के आलापों के समान होते हैं। गुणस्थान 1 से 13। हाँ, विशेष बात यह है कि आलाप कहते समय जहां पहले सत्य मनोयोग कहा गया है, कौन सा आलाप, योग आलाप कहते समय उसे निकालकर उसके स्थान में सत्य वचन योग कहना चाहिए। मृषा वचन योग के आलाप भी मृषा मनोयोग के आलापों के समान होते हैं। ये मृषा वचन योग कहां तक देखा था हमने, 1 से 12। बहुत विशेषता यह है, मृषा मनोयोग के स्थान पर मृषा वचन योग कहना चाहिए। इसी प्रकार सत्य मृषा वचन योग के भी आलाप कहना चाहिए, उभय वाले हो गए, अर्थात उभय वचन योग के आलाप सत्य मृषा मनोयोग के आलापों के समान जानना चाहिए। 1 से 12 गुणस्थान। असत्य मृषा यानी जो सत्य भी नहीं मृषा भी नहीं, जिसको हम अनुभय कहेंगे, असत्य मृषा वचन योग के आलाप वचन योग सामान्य के आलापों के समान होते हैं, क्योंकि 1 से 13 गुणस्थान। विशेषता यह है, असत्य मृषा वचन योग आलाप कहते समय एक असत्य मृषा वचन योग ही कहना चाहिए, यानी योग आलाप में एक ही बताना है उसमें। ये मनोयोगी के समान ही यहां पर लगा लेना है। तो ये मनोयोग और वचन योग की हो गई बात। अब काय योगी जीवों के आलाप आप बताएंगे, काय योगियों के गुणस्थान, उनके जीव समास 1 से 13 गुणस्थान। काय योगी है ना, हाँ, 14 वाले को कोई योग नहीं है, जीव समास सभी 14 लेना, काय योग है ना। अपर्याप्त में काय योग होगा कि नहीं होगा, काय योग नहीं है, कारमान काय योग है, औदारिक मिश्र का, हम काय योग कहा, हमने औदारिक कहाँ कहा, तो सबको लेना के, हाँ, जीव समास में सभी 14 के 14 जीव समास लेना, प्राण में भी यानी वो अयोगी का एक छोड़ दो, बाकी सभी प्राण आ जाएंगे। यानी सहयोगी के भी चार और दो उसको भी ले लेंगे। कायोग है ना, कोई ना कोई कायोग है, बस उतना है। इस तरह से भी हमको सोचना है सारा। देखो, कायोगी जीवों के आलाप कहने पर आदि के 13 गुण स्थान, 14 जीव समान, क्योंकि एक इंद्रिय भी कायोगी तो है ना उससे, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, वे एक इंद्रिय सहित सबको लिया है। 10 प्राण 7 प्राण, 9 प्राण 7 प्राण, 8 प्राण 6 प्राण, 7 प्राण 5 प्राण, 6 प्राण 4 प्राण, 4 प्राण 3 प्राण, यानी संगी से लेकर एक इंद्रिय तक आए 4 प्राण और 2 प्राण, ये किसके है? 13 गुण स्थान वाले।
13 गुण स्थान में कितने?
4 और 2। 2 कब होते हैं? समुद्रात में। चारों संज्ञा तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। चारों गतियां एक इंद्रिय जाति से लेकर पांचों जातियां, अभी काय मार्गणा में पृथ्वी काय को आदि लेकर 6 काय, एक एक काय का नाम हम अलग गिना था तो 6 काय होते। अभी काय योग में कितने हैं भेद उसके, जैसे मनोयोग कहते समय 4 भेद बताए, तो काय योग के भेद कितने होते हैं? 7। कौन से 7 मालूम है? अरे अरे छोड़कर हमको, हाँ, औदारिक, मिश्र, वैक्रिक, मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कारमान, 7 हो गए ना, तो तभी 7 लिखना उसमें। तो योग कॉलम में क्या लिखेंगे? देखो, सातों का योग, क्योंकि का योग इतना है अपना क्राइटेरिया, तो सातों का योग। तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, आठों ज्ञान, सातों संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धि भी अभव्य सिद्धि भी, 6 सम्यक्त्व, संगिक असंगिक तथा संज्ञ और असंगी इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान है। आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। बाकी तो आसान है, वो 14 वाले को छोड़ देना है और बाकी की बात हमको सोचना है। फिर काय योगियों में पर्याप्त के आलाप कहेंगे, काय योगियों में अपर्याप्त के आलाप कहेंगे, इस तरह से। देखो, उन्हीं कायोगी जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर गुणस्थान तो हमने नक्की किए थे, तो 1 से 13 आदि के 13 गुणस्थान। अब पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास कौन से? हाँ, एक इंद्रिय सूक्ष्म बाधा, द्विंद्रिय, तिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचे। पर्याप्त के आलाप पूछ रहे इसलिए पर्याप्त कहना। कायोग इन जनरल तो हमने पर्याप्त पर्याप्त सबको लिए थे, यहाँ केवल पर्याप्तों के बताना, तो पर्याप्तों की पर्याप्तियां बताएंगे कितने होगी? 6, 5 और 4। संगी को भी लेना, असंगी से द्विंद्रिय को भी लेना, एक इंद्रिय को भी लेना, 6, 5 और 4। अब सबके प्राण गिनाओ। चार और चार। हाँ, यानी एक इंद्रियों के भी 4 और सहयोग केवली के भी 4। हाँ, अलग अलग है पर वो है। हाँ, देखो पढ़ेंगे इसको। आदि के 13 गुण स्थान, पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 4 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण और 4 प्राण, एक इंद्रिय के विचार है और सहयोगी के विचार, चारों संज्ञा तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है, चारों गतियां एक इंद्रिय जाति आती, पांचों जातियां, पृथ्वी का है, भी छो का है, वैकृत मिश्र कायोग के बिना छह कायोग अथवा अथवा इसलिए कहा क्योंकि वो पर्याप्त नाम कर्म वालों को अगर लेंगे तो उसकी अपेक्षा से बात हो रही है। पेज नंबर 639 तीसरी लाइन कायोगी के पर्याप्त आलाप में वैकृत मिश्र कायोग के बिना छह को अथवा औदारिक कायोग, वैकृत कायोग और आहारक कायोग ये तीन कायोग, क्योंकि पर्याप्त हमको गिनना है इसलिए मिश्र कायोग को नहीं गिना यहाँ पर। और वो गिनते हैं किस अपेक्षा से, आहारक मिश्र को भी गिना और औदारिक मिश्र, क्योंकि सहयोग केवली के तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है फिर भी औदारिक मिश्र है, और जो मुनिराज है वो तो पर्याप्त जीव है फिर भी उनके आहारक मिश्र है, उस अपेक्षा से उसको गिन सकते हैं ये कहना चाहते हैं। इसलिए दो विकल्प बताए उन्होंने, तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, आठों ज्ञान, सातों संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, क्योंकि हमने तेरह ही गुण स्थान लिए ना पहले से तेरह तक, छह सम्यक्त्व, संगिक असंगिक तथा संगी और असंगी इन दोनों विकल्पों से रहित स्थान भी है, आहारक अनाहारक अथवा आहारक ही होते हैं, आहारक ही होते हैं क्योंकि अनाहारक यानी वो तो समुद्रात की अपेक्षा कह दिया, परंतु वो अगर आप उसको अपर्याप्त कहो तो इसको हम आहारक ही कहेंगे, इसलिए उन्होंने अथवा कह के अलग अलग विकल्प बताए। साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी और साकार अनाकार उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। देखो विशेषार्थ इसी का पढ़ते हैं, इसलिए छोड़ा वो तो पूरा अपर्याप्तों के ही होता है, अपर्याप्त अवस्था है ना, ऐसे औदारिक मिश्र भी अपर्याप्त अवस्था में होता है, केवली के समुद्रात अवस्था में, इसलिए उसको पर्याप्त आलापों में स्वीकार कर सकते किसी अपेक्षा से। इसे आहारक मिश्र का योग भी किसके होता है, मुनिराज है जो पर्याप्त, उनके शरीर तो पर्याप्त है, वो तो पर्याप्त अवस्था चल रही है, आहारक की अपेक्षा हम उसको अपर्याप्त कहते हैं, इसलिए उन दोनों को स्वीकार कर भी सकते नहीं भी कर सकते अपेक्षा सहित। वो तो अपर्याप्त के ही होता है, वहां तो शरीर की रचना हुई नहीं अभी, यानी दूसरी पर्याप्ति चल रही तब तक। देखो पूर्व में कायोगी जीवों के पर्याप्त काल में जो वैकृत मिश्र बिना छह अथवा तीन योग बतलाए हैं, इसका कारण यह है कि छठवें और तेरहवें गुणस्थान में आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात के समय भी विवक्षा भेद से, विवक्षा भेद यानी कथन के भेद से, अपेक्षा युक्त कथन, जब पर्याप्तता स्वीकार कर ली जाती है, यानी उनको जब अगर पर्याप्त कहेंगे हम तो तब उसकी अपेक्षा पर्याप्त अवस्था में भी छह योग बन जाते हैं, और जब अपर्याप्तता मान ली जाती है यानी हम किसी अपेक्षा से उनको अपर्याप्त कहते हैं, तब पर्याप्त अवस्था में औदारिक आहारक और वैक्रियक ये तीन योग ही बनते हैं। तो हम औदारिक मिश्र को, कारमान को, वैकृत मिश्र को, आहार सबको हम अपर्याप्त कह देंगे, विवक्षाएं ने अपेक्षाकृत कथन। पेज नंबर 640 पर आए, इसी प्रकार आहार मार्गणा के कथन में, यानी वो आहारक है कि अनाहारक है, ये जब कथन आता है पहले आहारक और अनाहारक ये दो आलाप बताए, अनंतर यानी उसके बाद एक आहारक आलाप ही बतलाया, जब हम उसको छह योग स्वीकार करते हैं तो उसकी बात अलग अलग होती है। इसका भी कारण यह है कि तेरहवें गुणस्थान में केवली समुद्घात के समय भी पर्याप्तता के स्वीकार कर लेने से, यानी पर्याप्त नाम कर्म का स्वीकार है, आहारक और अनाहारक दोनों आलाप बन जाते हैं, परंतु कपाट प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में केवल अपर्याप्तता के स्वीकार कर लेने पर काय योगियों की पर्याप्त अवस्था में अनाहारक आलाप नहीं बनता है, यानी उसको अपर्याप्त ही कह दिया, पर्याप्त कहा ही नहीं है, तो उसमें अनाहारक भी नहीं कहेंगे हम। इसका यह तात्पर्य हुआ, जब काय योगियों के पर्याप्त अवस्था में छह योग कहे जावे तब आहारक और अनाहारक ये दोनों ही आलाप कहना चाहिए, और जब पर्याप्त संबंधी केवल तीन योग ही कहे जावे तब एक आहारक आलाप ही कहना चाहिए। सातों संयमों के संबंध में भी यही विवक्षा भेद जान लेना चाहिए। सात संयमों में क्या विवक्षा भेद किया उन्होंने? चलो ठीक, अभी काय योगी अपने मार्गणा कौन से काय योगी है और उसके अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहना है, गुणस्थान बताएंगे आप? काय योगी जीव अपर्याप्त अवस्था, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा छठा और तेरवा, ये पांच हो जाएंगे, तो उसमें ज्ञान कितने होंगे? विभंग को रखना
नहीं,
विभंग को भी छोड़ना और मनपरे को भी छोड़ना, और संयम में संयम सेम होगा
नहीं,
असंयम होगा, छठे में सामायिक छदों की स्थापना होगी और केवली के यथाख्यात होगा, और सम्यक्त्व में क्या क्या नहीं होगा? सम्यक मिथ्या तो नहीं होगा, बिना अभी इसको पढ़ेंगे। देखो काय योगी जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर 640 पर है दूसरा पैराग्राफ। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, अविरत सम्य दृष्टि, प्रमत्त संयत सहयोग केवली, ये पांच गुणस्थान। सात अपर्याप्त जीव समास, क्योंकि पहला गुणस्थान है तो सभी को लेना ना, सभी सातों को लेना। छह अपर्याप्तिया, पांच अपर्याप्तिया, चार अपर्याप्तिया। सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण और दो प्राण। सुने भाई, दो प्राण किसके हैं? केवली के। कब? समुद्घात में। बहुत अच्छा। चारों संज्ञाएं और तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। चारों गतियां, एकेंद्रीय जाति आदि पांचों जातियां, पृथ्वी काय आदि छह काय। अब यहां योग देखो, औदारिक मिश्र का योग, वैकृत मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये चार योग। तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है। चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। विभंगावधि और मनपरे ज्ञान के बिना छह ज्ञान। चौथे तक तो असंयम है, छठे के लिए सामायिक छेदों पर स्थापना और तेरहवें के लिए यथाख्यात, ये चार संयम। चारों दर्शन द्रव्य से कपोत और शुक्ल लेशाएं, अपर्याप्त लिया ना के मात्र, भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व के बिना शेष पांच सम्यक्त्व, संगिक असंगिक तथा अनुभय स्थान भी है। तेरवे को लेना, इसलिए आहारक अनाहारक, अपर्याप्त में तो जब कारमान का योग है तो अनाहारक, बाद में आहारक होते हैं। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी तथा दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। अब पहले उन्होंने बताया ना कायोगी जीवों के कितने हैं, तो गुणस्थान सब बताएंगे। कायोगी कहाँ तक है, तो 13वें तक। अब कायोगियों में एक एक गुणस्थान लेके बताएंगे, यानी कायोगी जी और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। तो जीव समाज कौन से हो गए, फिर से कायोग है और मिथ्या दृष्टि जीव है, तो कौन कौन से जीव समास हो गए बोलो। 14, बहुत अच्छा, सबके है ना, मिथ्यात्व में सभी पड़े हैं। हाँ, तो 14 जीव समास हो गए। तो जैसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में लगाते वैसे यहाँ लगाएंगे, केवल अभी हमको योग का कॉलम है, वहाँ काय योग लिखना है। तो काय योग है मिथ्या दृष्टियों के, कौन कौन से काय योग हो गए बोलो। आहार कह रहे आहारक नहीं होगा, वो कहते हैं छठा गुणस्थान वाले का। अभी वो दो को छोड़ना, काय योग के भेद भले 6-7 है, ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान बता दिया। वो आहारक वाला तो मात्र छठे गुणस्थान में लगा लो। हाँ, वो तो यहाँ वो नहीं होगी। अभी एक एक गुणस्थान में कौन से योग होते हैं, काय योग, वो सोच कर देखना पड़ेगा। तो पहले गुणस्थान में कौन से योग देखे, अभी हम केवल योग की बात करेंगे, 2-3 मिनट है ना। पहले गुणस्थान में 5 काय योग होते हैं, दूसरे गुणस्थान में, दूसरे में, क्योंकि उस गुणस्थान में मरण भी होता है जाता है। तीसरे गुणस्थान में कौन से, औदारी करो एक रे। अभी हमको मनोयोग वचन योग नहीं सोचना है, काय योग में कौन से हो गए उतना सोचना है। वो वैक्रिक और औदारिक दो ही है। तीसरा गुणस्थान, चौथे में, ये 3 तो हो गए ना, कर्मण भी होगा, वैक्रिक मिश्र भी होगा, औदारिक मिश्र भी होगा, वैक्रिक औदारिक दोनों हो गए, 5 हो गए चौथे में। पांचवे में पांचवे में कौन सा, एक औदारिक काय योग, एक औदारिक। हम काय योग की बात करें, मनोयोग वचन योग होते उसकी चर्चा यहाँ नहीं। पांचवे में औदारिक काय योग, छठे में किसी को औदारिक है, किसी को आहारक है, किसी को आहारक मिश्र भी है। सातवे में अभी ऊपर एक 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 कहना। हाँ, और केवली को, केवली को तीनों हो सकते हैं ना, कब होते हैं उसकी चर्चा नहीं। कारमाण भी हो सकता है समुद्रात में, औदारिक मिश्र भी हो सकता है और औदारिक भी हो सकता है। ये कायों के प्रकरण किसको कौन से गुणस्थान में कौन से हो गए वो देखना है। बाकी कथन तो वैसा ही होगा, उस गुणस्थान में कितने ज्ञान है, कितने दर्शन है, वो तो बात वही चलेगी। अब ये यहाँ से कल हम पढ़ेंगे 641 पेज पर, वहाँ काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप है ना, वहाँ से कल पढ़ेंगे। विशेष बात नहीं, हम 641 पेज पर आए, 41 पर आए हम। 41 में जो नया पैराग्राफ है ना, वहाँ से शुरू करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। प्रेरणा में नमो नमो।